सो डॉक्टर भाटिया, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्या है और इसके क्या कारण हैं?
इसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या ड्रग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसके मायने ये होते हैं कि अगर एक पेशेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज से बीमार है, अगर हम उसे स्टैंडर्ड डोजेज में एंटीबायोटिक्स दें तो उसे रिकवर करना चाहिए, लेकिन अगर वो रिकवर नहीं होता तो उसका एक मायना ये होता है कि जिन जर्म्स ने उस बीमारी को किया है उन्होंने अपने अंदर ऐसी शक्ति बना ली है कि एंटीबायोटिक्स का उन पर असर नहीं हो रहा। इसलिए ये शब्द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कारण जो है वो समझने के लिए दो चीजें मालूम रखनी चाहिए कि एक तो जितने भी जर्म्स हैं वो अपनी जिंदगी में इवॉल्व होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर या उनका फंक्शन थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। और कभी ऐसा होता है कि उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन ऐसा बदल जाता है कि वो एक एंटीबायोटिक के असर से हट जाते हैं, उससे वो नहीं मरते। लेकिन अगर हम उसी एंटीबायोटिक को बार बार इस्तेमाल करें उसी तरह के जर्म्स पर, तो वो जिनमें रेजिस्टेंट होता है उन बैक्टीरिया का या उन जर्म्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वो पूरी स्पीशीज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की ही बन जाती है, और तब वो जिसे भी इन्फेक्शन देंगे उसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का असर नहीं आएगा। तो इसका जो मायना ये हुआ है कि ये तो अपने आप में एक प्रोसेस चलता रहेगा जर्म्स के अंदर अपने आप को बदलने का, लेकिन अगर हम गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स उन पर डालेंगे तो उनमें रेजिस्टेंस सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट होने के बाद एम्प्लीफाई हो जाएगा और फिर वो सबको एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से ही इन्फेक्शन होगी। और इसकी ये समस्या हमारे लिए अब बहुत बड़ी बन चुकी है, जिसे कि हम या सारी दुनिया आजकल इसे इन्फेक्शियस डिजीजेस की लड़ाई में सबसे बड़ा चैलेंज मानती है।
तो क्या ये कहना उचित होगा कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध अगली महामारी हो सकती है?
शत प्रतिशत, और अगली नहीं, ये तो एक ऐसी महामारी है जो कोविड की तरह नजर तो नहीं आ रही लेकिन हमारे साथ ही चल रही है, और अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो इसका और भयंकर रूप हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आंकड़े दे देता हूँ। आज की तारीख में दुनिया में ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 7 लाख लोग हर साल उस उन जर्म से मरते हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, और अगर हमने कुछ अब सावधानियां नहीं बरती तो 2050 तक, मतलब 30 साल बाद, हर साल 1 करोड़ लोग हर साल रेजिस्टेंट जर्म्स की वजह से मरेंगे। जो जानवरों से हमें खाना मिलता है उसमें 7% तक की कमी आ जाएगी। दुनिया की इकोनॉमी को $100 ट्रिलियन तक का नुकसान होगा और दुनिया की जीडीपी 3% कम आ सकती है। ये अगर हम कुछ नहीं करते, अभी समय है जबकि हम सबको मिलके इस लड़ाई से लड़ना है।
तो इस समस्या से निपटने के उपाय क्या हैं? खासतौर पर क्या इसकी रोकथाम के लिए कोविड-19 महामारी से कोई सबक सीखा जा सकता है?
जी हाँ, क्यों नहीं, कोविड-19 से हम बहुत से सबक सीख रहे हैं। सबसे बड़ा सबक तो हम ये सीख रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इस तरीके से काम करे कि कहीं पर भी एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल ना हो। कोविड-19 से हम ये भी सीख रहे हैं कि जब तक जनता, जब तक पेशेंट्स, जब तक कम्युनिटीज अपने आप को एक्टिवली एंगेज नहीं करेंगी किसी भी पब्लिक हेल्थ समस्या में, उसका पूरा हल नहीं हो पाएगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी हमें जनता से पूरा पूरा सहयोग चाहिए। जनता को ये चाहिए कि जो भी डॉक्टर उन्हें दवा एंटीबायोटिक जब भी देते हैं, लिख के देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका सही तरीके से सही समय तक सही डोज में लेना अति आवश्यक है। और उसके अलावा अपने आप एंटीबायोटिक लेना, कोई बुखार हो गया एंटीबायोटिक ले लिया, बच्चे को बुखार हो गया उसे एंटीबायोटिक दे दिया, ये सब वो गलत बातें हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंट जर्म्स जो हैं उनका प्रजनन होता है और वो फैलते हैं। ये हमें जनता से भी ये उम्मीद है और हमें हेल्थ सिस्टम से भी ये उम्मीद है कि वो ऐसे सिस्टम बनाए ताकि हर किसी को सही एंटीबायोटिक सही टाइम पर सही बीमारी के लिए सही डोज में मिल सके। हम कोविड से भी यही सीख रहे हैं और हम एएमआर से भी यही सीख रहे हैं। सिर्फ ये है कि कोविड एक एक्यूट चीज है, जो कि एकदम से आई है और हो सकता है कि कुछ टाइम में चली भी जाए, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक तरह की क्रॉनिक चीज है जो लंबे समय से आ रही है और अगले दिनों में और भयानक रूप धारण करेगी।
मुझे एक बात समझाइए, ये एक स्वास्थ्य समस्या है, तो ऐसे में खाद्य और कृषि संगठन इससे कैसे जुड़ा है? एफएओ की क्या भूमिका है इसमें?
देखिए, ये स्वास्थ्य समस्या तो है, जैसे हम कहते हैं कि ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, लेकिन जो मैं आपको पहले कहने की कोशिश कर रहा था कि जब भी बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स के साथ इंटरेक्शन होगा तो बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंस है वो सिलेक्ट आउट हो जाता है। अब एक तो सिचुएशन होगी जहां हम इंसानों में एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन इंसानों से ज्यादा एंटीबायोटिक्स जो है वो जानवरों में, मवेशियों में, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में इस्तेमाल होता है। वहां पर भी वही जर्म्स हैं जो इंसानों को इन्फेक्शन देते हैं। तो इंटरेक्शन जो बैक्टीरिया या जर्म्स और एंटीबायोटिक के बीच में है वो एनिमल सेटिंग में भी उतना ही है या शायद ज्यादा है जितना कि इंसानों की सेटिंग में है। जानवरों में खूब एंटीबायोटिक सिर्फ उनका इलाज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उसके अलावा उनका ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में, गाँव में अगर आप जाएं जहाँ जानवर होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीन, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती, उसकी वजह से उनमें कुछ इन्फेक्शन आने का हमेशा डर रहता है। उस डर को ओवरकम करने के लिए या हटाने के लिए सस्ता रास्ता चुना गया है कि सबको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दो। अब एंटीबायोटिक तो सबको दे दिया, लेकिन उस एंटीबायोटिक की वजह से जो रेजिस्टेंस आया और जिन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आया वो हमारे एनिमल के जो फूड है, दूध है, अंडे हैं, मक्खन है, मटन है, चिकन है, उस सब के थ्रू इंसानों में आता है, और जब इंसानों में आता है तो वही एक ऐसी बीमारी करता है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का असर नहीं आता। मैं आपको अंशुरी छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। चाइना में वो पिग्स का खूब उनका अपना काम है, खूब खाए जाते हैं वहाँ पे, उनका वजन बढ़ाने के लिए वहाँ पे कोलिस्टिन नाम की एक मेडिसिन और एंटीबायोटिक दी जाती रही है, और उस वजह से बहुत से बैक्टीरिया में कोलिस्टीन का रेजिस्टेंस आ गया। कोलिस्टीन एक ऐसी दवा है जो कि आज जो हमारे बहुत सीरियस पेशेंट हैं इन्फेक्शन से, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें भी रेजिस्टेंस आ गया, और रेजिस्टेंस कभी एक देश में नहीं रहता, चाइना में था, 2 साल के अंदर अंदर 32 और देशों ने उस रेजिस्टेंस को जानवरों और इंसानों में दिखा दिया, मीन्स वो इस तरह फैलता है। तो हमें जानवरों में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रैशनली और बहुत ध्यान से करना है, और इसीलिए एफएओ इस चीज में एक लीडिंग भूमिका में आई है, ताकि जो वेटरनरी सेक्टर है, एनिमल हेल्थ सेक्टर है, उसमें भी इस चीज के बारे में जानकारी दी जा सके, वहां पर कितनी बड़ी समस्या है उसका मैग्नीट्यूड समझा जा सके, उसको आगे कैसे हल करना है उसमें देशों की मदद की जा सके। और सिर्फ एफएओ ही नहीं, हम FAO और WHO और OIE, तीनों जो दुनिया की बड़ी एजेंसीज हैं ह्यूमन और एनिमल हेल्थ से रिलेटेड, सब मिलकर काम कर रही हैं ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और कंट्री लेवल पर, ताकि सब लोग मिलजुल कर काम करें और ह्यूमन हेल्थ सेक्टर, एनिमल हेल्थ सेक्टर और एनवायरनमेंट सेक्टर, ये मिलकर काम करें। और इस मिलजुल के काम करने का एक नाम आया हुआ है, वन हेल्थ अप्रोच। तो हम सब लोग आजकल वन हेल्थ अप्रोच को चलाना चाहते हैं, सब सरकारों से यही इंटरनेशनल एजेंसीज रिक्वेस्ट कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि कोई भी सेक्टर अकेले में काम ना करे, मिलजुल कर काम करे। और अंशु जी, यहाँ पर मैं आपको कोविड के पास फिर लाना चाहूँगा। कोविड का सब जानते हैं वो शुरू कहाँ से हुआ। कोविड का वायरस कभी वाइल्ड लाइफ में होगा, वहाँ के जानवरों से वो इंसानों में आया और फिर इंसानों में फैलता रहा। अगर हमारी वन हेल्थ अप्रोच हो और हम वेटरनरी सेक्टर साथ मिलकर काम करें, तो ऐसे बहुत से वायरसेस जो वाइल्ड लाइफ से या जानवरों से इंसानों में आते हैं, उन्हें हम पेंडेमिक होने से पहले रोक सकते हैं।
तो इस समस्या से निपटने के लिए सभी देश क्या कर सकते हैं, और एफएओ किस तरह भारत और दक्षिण एशियाई देशों में इस पर काम कर रहा है?
देखिए, इसके लिए 2015 में WHO, FAO और OIE ने मिलकर एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें कि एक डायरेक्शन दी गई है कि हम कैसे AMR की समस्या को हल कर सकते हैं। उसमें 4-5 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि जनता को इन्वॉल्व किया जाए, रैशनल यूज़ किया जाए एंटीबायोटिक्स का, वैक्सीन वगैरह का ज्यादा यूज किया जाए इंसानों में भी जानवरों में भी, ताकि बीमारियां ही ना हो, सैनिटेशन का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, रिसर्च की जाए और सर्वेलेंस करके कितना कहाँ पर मैग्नीट्यूड है इस प्रॉब्लम का वो समझा जाए। तो उसी के अलाइन करके आज लगभग 80 देशों ने अपने नेशनल एक्शन प्लान बना लिए हैं, इंडिया ने भी बना लिया है और 2017 में हिंदुस्तान ने ये प्लान ग्लोबल कम्युनिटी को प्रेजेंट कर दिया था। तो आज FAO भारत सरकार की मदद कर रहा है नेशनल एक्शन प्लान में एनिमल हेल्थ सेक्टर का जो रोल है उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो FAO ने भारत सरकार के और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया है हिंदुस्तान में, जिसे इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरीज एंड एनिमल्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या छोटे में इनफार कहा जाता है, वो बनाया है, जो पिछले 2 सालों से अब ऑपरेशनल है, फंक्शनल है और वो डेटा जनरेट कर रहा है कि कितनी बड़ी समस्या हमारे देश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जानवरों में है और फिशीज में है। और अब वो वही नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता ये भी करेगा कितना एंटीबायोटिक्स गलत तरीके से इस्तेमाल होता है हमारे एनिमल सेक्टर में, और उसके साथ ही फिर एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज और एक्शंस ताकि इन सब चीज़ों को रैशनलाइज किया जा सके वो शुरू किए जाएंगे।